ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय चैतन्य महाप्रभु कृत शिक्षाष्ट्र का हरे कृष्ण श्लोक संख्या छे नयनम गलदशुद्धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा फुलकायर निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। इसके पहले तीन नंबर श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ने कहा शिक्षाष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध श्लोक चुनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुन अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, जिसमें दायन्य भाव प्रमुख है। तो इस श्लोक में और शिक्षाष्टक के सब श्लोक में ये दायन्य भाव, मैं अति दीन हूं, इस भावना प्रमुख है। तो इस श्लोक में चैतन्य प्रभु नहीं कहते हैं कि मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त किए हूं। चैतन्य महाप्रभु इस दिन के लिए आशा करते हैं जिसमें उनके नेत्रद्वय से अश्रु आंसू धारा जैसे निस्रित होगा और उनके श्रीमुख से उनकी वाणी गदगद मतलब अस्पष्ट होगी और जिनके दिव्य शरीर पर उनके वो रोमांच होगा मतलब सभी क्या बोलते हैं वो बाव रोमांच रोमांच रोमांचित पुलक होगा। कैसे तव कृष्ण तुम्हारा नाम ग्रहण करने का समय वो दिन कब होगा जिसमें इस प्रकार मुझे पूरा भाव होगा। तो वास्तव में ये वर्णन है चैतन्य महाप्रभु के बारे में चैतन्य चरितामृत में, विशेषकर रथ यात्रा का समय चैतन्य महाप्रभु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कहना चाहते थे, क्योंकि फिर भी भावाभीष्ट होने के कारण से उन्होंने स्पष्ट रूप से जय जगन्नाथ नहीं बोल सके और ऐसी वाणी निश्रित हुई उनका श्रीमुख से। और वो वर्णन है कि उनके अंकों से आंसू धारा जैसे जल यंत्र, जैसे होली में वो क्या बोलते हैं हिंदी में पिचकली खेलने में, तो नदी जैसे पानी उनके अंकों से आए थे। तो वो वर्णन है और वर्णन है कि उनका श्रीमुख से प्रेम भाव का कारण से फेन निकल गए हैं। और एक बहुत बुद्धिमान भक्त, वो फेन उनके दो हाथ संग्रह करके फिर लिया। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि वो दिन आएगा जिसमें मेरे नयनों से पानी निकाल जाएगा नदी जैसे। और चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की इच्छा है कि मैं भी उपस्थित होऊंगा समय, और वो आंसू जो चैतन्य महाप्रभु के आंखों से आते है उससे मैं सिंचित होऊंगा और मेरा जीवन की सिद्धि होगी ऐसे। तो इसके पहले चैतन्य महाप्रभु एक साधक भक्त जैसे प्रार्थना की मैं भव सागर में डूब गया हूँ, हे कृष्णा मुझको उद्धार करो, आपका नाम उसके द्वारा आप सभी विश्ववासियों को कृपा प्रदान करते हैं, आपका नाम लेना बहुत सरल है, तो फिर भी मुझे आपका नाम लेने में रुचि नहीं है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु हमको शिक्षा देने के लिए शिक्षाष्टक है, एक साधक भक्त जैसे प्रार्थना की। तो अभी चैतन्य महाप्रभु तो प्राय सिद्ध भक्त जैसे प्रार्थना करते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं सिद्ध है, नित्य सिद्ध। हम ऐसे ही कहते हैं साधना भक्ति है, भाव भक्ति है, प्रेम भक्ति है, और सिद्ध भक्त वो वर्णन है। तो सिद्ध भक्त ऐसे कहने से सामान्यतः हम समझते हैं कि वो भक्त कठोर साधना जड़ भक्ति करने से भक्ति सिद्धि अर्थात प्रेम प्राप्ति मिल गए। परंतु वैष्णव कोश में सिद्ध और सिद्धि इस प्रकार है, नित्य सिद्ध, तीन प्रकार के सिद्ध भक्त है, साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध और नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध का मतलब तो कभी भी पतित दूषित भव बंधित नहीं थे, सदैव सिद्ध है। तो चैतन्य महाप्रभु नित्य सिद्ध, साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध, और अभक्तों के भी चरम उपास्य है। वे सिद्ध, सभी सिद्ध के ऊपर है, उनके लिए पतित होना का उनके बारे में उसके कुछ प्रश्न नहीं है। परंतु हमको शिक्षा प्रदान करने के लिए वे हमारे बीच अवतरित होते। ये दो शब्द है, पतित अवतरित। तो अधिकांश प्राणी जो भौतिक संसार में है तो कृष्ण बहिमुख होने से इस भव सागर में पतित हुए हैं, और भगवान स्वयं अनेक अनेक अवतार लेके और उनके प्रतिनिधि जन नित्य सिद्ध वैकुंठवासी गोलोकवासी जन वे भी अवतरित होते हैं, पतित नहीं होते हैं। तो अवतार लेते हैं हमको उद्धार करने के लिए। हम ऊपर से गिर गए हैं और हम यहाँ पर हैं, और ऊपर जाने का उपाय भी नहीं है, और कि हमें ऊपर जाना है उसकी धारणा भी नहीं है। अनादि कर्म फले थोड़ी भवार्ण वजले थोड़ी बारी न देखी उपाय। तो जो वैकुंठ से आते हैं हमको उद्धार करने के लिए, वे हमारे बीच में आते हैं, लेकिन हम जैसे साधारण व्यक्ति नहीं है। वे काम क्रोध लोभ इत्यादि से पूरा मुक्त होते, वे हमारे बीच होते हुए भी नित्य सिद्ध हैं। तो थोड़ा समय के लिए हमारे बीच में उपस्थित है, फिर वापस जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु नित्य सिद्ध है, कृष्ण भक्ति नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध कब नय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। कृष्ण भक्ति सबके हृदय में है, सबका स्वभाव है। जो नित्य सिद्ध भक्त है तो वैसे भक्त कभी भी कृष्ण को भूलते नहीं, और जो असिद्ध है, जो माया से प्रभावित है, कृष्ण की बहिरंग शक्ति माया से प्रभावित होते हैं, वे कृष्ण को भूलते हैं। और कृष्ण भूली से जीवन आदि बाह्यमुख अथैव माया तारे दया संसार दुख। तो चैतन्य महाप्रभु एक साधारण साधक जैसे हमको शिक्षा देते हैं, तो ये शिक्षा मतलब उनका व्यवहार आचरण करने चरितार्थ करके हमको शिक्षा देते हैं। तो कैसे हमको शिक्षा देते हैं, जैसे और स्कूल में वो शिक्षक ब्लैक बोर्ड में ए बी सी लिखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो छोटा लड़का है जिसका ए बी सी सीखना पड़ता है। वो सब कुछ जानते हैं, उनका शिक्षा का स्तर वो ए बी सी के बहुत ऊपर है, परंतु चूंकि वो सब विद्यार्थियों तो नहीं जानते, इसलिए उनका हित के लिए वो शिक्षक ए बी सी ऐसे लिखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु मायाबद्ध जीव की अवस्था से बहुत ऊपर है, परंतु उन्होंने कृपा करके हमको शिक्षा दिया है, जिससे हम धीरे धीरे सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकते। तो वो सिद्ध अवस्था क्या है? सिद्ध अवस्था में भक्तों भावाविष्ट होते हैं, अंकों से सदैव आंसू निकाल जाते हैं, वाणी तो अस्पष्ट होते हैं, मन तो पागल जैसे है। कृष्ण भक्ति में उत्तम स्तर है पागल होना। श्रीमद् भागवत में वो वर्णन है कि इस जड़ जगत में सब लोग पागल है, वो श्लोक क्या है, पुंस स्त्री अमित निभाव में, नहीं नहीं वो नहीं, नूनंग प्रमथ कुरुते विकर्म, यद इंद्रिय प्रीति आपनोति न साधु मन्य यथ आत्मनोयम असन्नपि क्लेशद आसदेह। चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है कि प्रेम प्रीति सर्वोत्कृष्ट प्राप्ति है। तो इस भौतिक जगत में मायाबद्ध जीवों की प्रीति है, वो प्रीति क्या है, इंद्रिय सुख के लिए, और इसलिए वे पागल है, क्योंकि इंद्रिय सुख के लिए और लोग पाप करते हैं और इसका फल क्या होता है, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। तो इसलिए वे पागल है, और इसलिए जो बुद्धिमान है इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं करते। यही संस्पर्श जब भोग आया, क्या है अभी तो दुख योनय एव थे आद्यंत वंत खौंतया नथेषु रमते बुद्ध, बुद्धिमान लो तो इंद्रिय सुख में सुख नहीं लेते, क्योंकि वे जानते हैं वो इंद्रिय सुख महान दुख का कारण है। तो बुद्धिमान लोग तो पागल नहीं होते, और बुद्धिहीन लोग तो पागल है। और चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है कि पागल होना चाहिए, परंतु किस प्रकार पागल, प्रेम पागल, और वो पागलपन तो संपूर्ण विपरीत है इस भौतिक मायिक पागलपन से। तो अगर कोई आपसे पूछेंगे कि आप इतना सत तपस्या करते हैं, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और जवान होते हुए भी तो सिनेमा नहीं जाते, टीवी नहीं देखते, क्रिकेट नहीं खेलते, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसे नहीं करते हैं, शराब नहीं पीते, चाय भी नहीं पीते, तो ये सब करने से आपका चरम प्राप्ति क्या है, आपकी आशा क्या है, पागल हो तुम ऑलरेडी पागल हो, ये सब नहीं करते तो ठीक है हम पागल है, तुम उसी ढंग से पागल हो और हम इसी ढंग से पागल हो। और हमारी चरम आशा है संपूर्ण पागल होना, चैतन्य महाप्रभु का पागलपन के अनुसार, वो अलग पागलपन। भक्तिनाथ ठाकुर भी कहते हैं कि उनकी चरम इच्छा है संसारी लोग का दृष्टिकोण में पागल होना, विषय हमारे, वो क्या है विषय हमारे, अंगते दिबे को धूलि पागल बोलिया, विषय हमारे पागल बोलिया अंगते दिबे धूलि। भक्तिराव ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि मेरी इच्छा है कि वो दिन आएगा जिसमें विषय भोग विलासी जन मुझको पागल कहेगा, ओ पागल ओ पागल पागल पागल, और मुझको धूल फेंक देंगे, मेरी इच्छा की पूर्ति हो ऐसे। फिर भी भक्तिनाथ ठाकुर समाज की दृष्टि में वो एक आदर्श समन्वित सहकारी सेवक थे, परंतु अंदर में उनकी इच्छा थी ये सब समाज छोड़ना और नवरी धाम में पागल जैसे कृष्ण भक्ति करना। तो ये उत्तम स्तर है भक्ति की। धन जन सुंदरी जो सब लोग चाहते हैं वो सब आशा धन जन सुंदरी के लिए चढ़ के प्रेम धन के लिए इच्छा करना, व्रज जन की सेवा करना और व्रज सुंदरी गोपियां की सेवा करना, ये चैतन्य महाप्रभु के उन्मत्त पागल भक्तों की चरम इच्छा। इसके बारे में नयनम गलदाशुधारया इस श्लोक की व्याख्या में कृष्णदास कविराज बंगाली में इस मंतव्य के चैतन्य महाप्रभु की वाणी की प्रेम दान बिना बेत्ता दरिद्र जीवन दास करे बेतन मोरे देह प्रेम धन। तो चैतन्य महाप्रभु जो प्रार्थना करते हैं कि मेरी कुछ भी इच्छा नहीं है धन के लिए, अभी धन के लिए ही प्रार्थना करते हैं, तो ऐसे कुछ चालू लोग ऐसे बोलते हैं मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ कुछ भी नहीं चाहता हूँ कुछ भी तो कुछ ले लो नहीं नहीं कुछ भी नहीं चाहते कुछ ले लो कुछ ले लो। ओ ठीक है तो मुझको 10 करोड़ रुपया दे दो। तो ऐसे ही चीटिंग बातें करते हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं है, ढोंगी नहीं है। तो धन नहीं चाहते, धन का मतलब सोना चांदी रुपया डॉलर वो धन चैतन्य इसलिए चैतन्य महाप्रभु की इच्छा नहीं है, प्रेम धन वो ही धन है। भारत में आज तक बहुत साधु है, उनका विचार में संसार में सब कुछ जो है तो कुछ नहीं है, दरिद्र होना अच्छा है। एक धोती एक बाहिवास करंग कोपीन बस और कुछ नहीं, और उनका धन है वैराग्य। तो वैराग्य एक धन है और वो साधारण धन से वो बहुत रम्य है। लोग जो साधारण भौतिक धन के पीछे है सदैव चिंतित रहते हैं, और जो वैराग्य धन का रस का स्वाद करते हैं संपूर्ण निश्चिंता होते हैं। तो उसके और बहुत ऊपर है प्रेम रस प्राप्ति, और वो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है। दास करे मुझको दास बने, तो प्रेम में अलग अलग रस है, दास्य रस या दास्य रति सख्य रति वात्सल्य रति श्रृंगार रति। तो श्रृंगार रति जिसमें व्रज गोपियां सर्वोत्तम है, उसका मूल है दास्य भाव, सब दास है। राधा इस नाम प्रसिद्ध है। राधा नाम का क्या अर्थ है? जो कृष्ण की श्रेष्ठ आराधना करते हैं वही राधा है। तो सब दास है। चैतन्य महाप्रभु का अवतार के पहले वो सब वैष्णव आचार्य जो आए थे, तो इस विषय दृढ़ता से स्थापन किया है, क्योंकि वेद तत्पर्य के व्याख्यक में अलग अलग सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत, वेद तो कल्पतरु है, निगम कल्पतरु, तो उसमें अगर कोई भौतिक इंद्रिय भोग विलास करने चाहते हैं तो वेद शास्त्र में उपदेश मिलेगा, और उसके अनुसार जैमिनी का कर्म सिद्धांत है, तो पूरा वेद शास्त्र अनुसंधान करने से जैमिनी इस सिद्धांत निष्कर्ष करते हैं कि पुण्य कर्म करने से स्वर्गवास प्राप्त होते हैं, तो वहां से यहां वापस आना है तो फिर दोबारा यज्ञ करना है, पुण्य कर्म करना है और ऊपर जाना, तो वो वेद शास्त्र में है। परंतु कि इस जगत का स्वभाव दुग्मय है वो भी शास्त्र में है, और उसके अनुसार वैरागी जन सिद्धांत निष्कर्ष करते हैं कि तपस्या वैराग्य करना है जिससे ब्रह्म उपलब्धि होती है, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। तो ये दो अपसिद्धांत खंडन करने के लिए और विष्णु दास्य सत्सिद्धांत स्थापन करने के लिए विशेषकर रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य आए थे और जोर से वेद का वास्तव सिद्धांत स्थापन किया कि विष्णु सर्वोत्तम है और जीव उनके दास है। तो ये वेद का वास्तव सिद्धांत है, और इस सिद्धांत में और अलग सिद्धांत नहीं है, लेकिन इस सिद्धांत में और कुछ भी कहना है, और भी सूक्ष्म सिद्धांत है कि दास्य में सख्य भी है, वात्सल्य भी है और श्रृंगार भी है, और ये चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित सिद्धांत है। तो प्रेम प्राप्ति के लक्षण इस श्लोक में वर्णित है। जो भक्त प्रेम प्राप्त है तो पागल जैसे है। पागल का मतलब अपने इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर सकते, और जो बोलते तो नहीं जानते, और जो बोलते तो दूसरे लोग उसको समझ नहीं सकते, जो करते हैं तो खुद का कल्याण के लिए नहीं है और किसी दूसरे के कल्याण के लिए भी नहीं है, तो ये पागलपन है। तो चैतन्य महाप्रभु का पागलपन तो वास्तव में तो सर्व sarva jagat nivasyon ka kalyan ke liye hai, parantu chunki sarva jagat nivasyon to vastav pagal hai, isliye Chaitanya Mahaprabhu ka pradan ka art nahi samajhte. Aur isliye Chaitanya Mahaprabhu ke paschat unke sampraday mein sab acharyon jo aaye the, to shastra vichar karne se sthapan kiye ki premapumarto mahan, Chaitanya Mahaprabhu jo prem prachar kiya hai, wo hi ved shastra ka sarvottam siddhant hai. To kali pagal hone se prem bhakti nahi hoti hai. Chaitanya Mahaprabhu ke sampraday mein sab acharya jo hai, sab pracharak jo hai, Chaitanya Mahaprabhu ki ichha ki sarvatra Krishna naam, Gaur naam prachar hoga, sarvatra Krishna prem bhakti prachar hoga, to Chaitanya Mahaprabhu ki is ichha ke anusar unke sampraday mein sab acharyon to pagal jaise vyavahar nahi karte, kyunki pagal hone se prachar nahi hote. To shisht buddhiman bhadra vyakti jaise Chaitanya Mahaprabhu ke bhakton manav samaj mein rehte hain aur is prakar bhakti prachar karte hain. Ek aur mahatvapurn vichar hai ki Chaitanya Mahaprabhu ki ichha thi prem pagal hona, aur Jagannath ka Rath Yatra ka samay is prem pagal pradarshan ke, pradarshan nahi kiya, wo pagal pan jo hai jo wo swabhavik hai, abhinay karne se prem nahi hote, wo prem swabhavik hai. Parantu samanyata Chaitanya Mahaprabhu sadharan log ke beech ye sab prem pagalpan ke lakshan pradarshan nahi kiye the. Jaise jab sarvapratham Shri Ramananda Rai ke sat Chaitanya Mahaprabhu ka milan tha, to swabhavik roop se Chaitanya Mahaprabhu aur Ramananda ke prem lakshan prakashit the, shved, kampa, ashru, pulak ityadi. Parantu us samay Chaitanya Mahaprabhu dekhte the ki upasthit bhi the Ramananda Rai ke sat bahut pandit brahman, sainya, sadharan log jo Chaitanya Mahaprabhu aur Ramananda ki prem priti ke bare mein kuch bhi dharna nahi thi. To isliye Chaitanya Mahaprabhu unka prem bhavana daman kiya hai, aur baad mein jab keval Ramananda ke sath the, us samay Ramananda ke sath prem priti bhavana के बारे में चर्चा की तो जनता के बीच में नहीं है। तो ये सब प्रेम कथा, प्रेम लक्षणों, इस शिक्षास्त्र से हम समझ सकते हैं, और विशेषकर चैतन्य चरितामृत से और जीव गोस्वामी के भागवत संदर्भ से और सब गौड़ीय साहित्य से हम समझ सकते हैं कि प्रेम प्राप्ति गौड़ीय वैष्णव धर्म का उत्तम सिद्धांत है, यही सिद्धांत है। और सब कुछ जो है गौड़ीय दर्शन, गौड़ीय आचरण में, वो सब करना है जिससे नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक अभिनय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते खड़े उदय, वो सब करना है जिससे प्रेम प्राप्ति होगी। वो कैसे प्रेम प्राप्ति होगी इसके बारे में इसके पहले चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हर्षे प्रभु कहे सुनो स्वरूप राम राय की बाबे नाम लोयले प्रेम उपजाय। किस प्रकार नाम कीर्तन करने से प्रेम उपजाय होते हैं, सुनो रामानंद और स्वरूप दामन। कैसे चिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुन अमानिदा मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो चैतन्य महाप्रभु की प्रेम प्राप्ति का उपाय एक श्लोक में है, संक्षेप में। तो ये गौड़ीय भक्तों, चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी जनों का लक्ष्य है, परंतु अनुकरण नकल करने से प्रेम प्राप्ति नहीं होती है, अनुसरण होना चाहिए। अर्थात भक्ति रसामृत सिंधु में वो सब नियम जो है वो सब पालन करने है, और इस प्रकार धीरे धीरे रुचि भक्ति के लिए, सेवा के लिए रुचि उत्पन्न होगी। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में वो सब नियम जो है, वो सब नियम का उद्देश्य है कि वो भक्तजन जो वो सब पालन करते हैं तो सदैव नवधा भक्ति में लीन हो जाते हैं, और सदैव इस प्रकार कृष्ण का कीर्तन करने से, श्रवण करने से, स्मरण चिंतन करने से तो पूरा कृष्णमय हो जाते हैं, और उससे स्वाभाविक रूप से वो कृष्ण भक्ति जो नित्य सिद्ध है, जो सबके हृदय में है, जो अभी सुप्त है, तो ये सब श्रवण कीर्तन चिंतन सेवन वो सब करने से स्वाभाविक रूप से वो सुप्त कृष्ण भक्ति पुनर उदित होगा। जैसे लकड़ी में आग है अप्रकट रूप में, तो उस पर आग डालने से जलते हैं, तो इस प्रकार सबके हृदय में कृष्ण भक्ति है, तो हृदय पर भक्ति लगाने से वो भक्ति जो सबके हृदय में है उदित हो, प्रकट होते। तो प्रकट होते हुए भी भक्तों दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति का अभिनय करते हैं। वास्तव में जो दिखाना चाहते हैं, मैं इतना सब प्रेम करता हूँ, तो वो सब देखने से वास्तव भक्तों समझ सकते हैं कि उसके हृदय में प्रेमोदय नहीं हुआ है। जो कली और नाटक जैसे प्रेम लक्षण प्रदर्शन करते हैं, तो वो लोग तो वास्तव भक्ति से बहुत दूर है। और जो वास्तव प्रेमी भक्त है, विशेषकर इस आधुनिक युग में जिसमें वो प्रेमी भक्त बहुत कम है और अभिनय करना बहुत ज्यादा होते हैं, तो शिल प्रभुपाद जैसे, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे, गौरकिशोर दास बाबजी, भक्तिराम ठाकुर, तो सामान्य लोग के बीच प्रेम के लक्षण प्रदर्शन नहीं करते, तो वो प्रेम भक्ति प्राप्त करना हमारी प्रार्थना है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ऐसा होना चाहिए, हमें जन्म जन्मांतर साधक नहीं होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु आए थे हमको प्रेम प्रदान करने के लिए। नमो महावरणाय, कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषय नमः। तो प्रेम प्राप्ति संभव है महावदन्य गौर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो चैतन्य महाप्रभु देते हैं, और कैसे वो प्रेम उपहार लेना है इसके बारे में हमें चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी शिष्यों गुरुजनों से सीखना चाहिए। विशेषकर रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु है, वो पुस्तक और सर्वशास्त्र विशेषकर श्रीमद् भागवत से संकलित है, और भक्तों के लिए वो व्यवहारिक मार्गदर्शिका है जिससे हम धीरे धीरे अधिका प्राप्त कर सकते हैं प्रेम राज्य में प्रवेश करने के लिए। हरे कृष्ण।